The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, welcome back to Success special transmission. There are countless virtues and blessings to recite Durood e Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites salat upon me one time, Allah azza wa jal writes the reward of one qiraat for him. And one qiraat is equal to the Mount Uhud. Sallu alal Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear viewers, today our topic is the blessed life of Bibi Hajra radiallahu ta'ala anha. Alhamdulillah, we have Kamal Madani with us and Asif Madani, Waseem bhai and Shahid bhai. And recitation of Holy Quran will be done by our Ustad Asif Madani, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
دلاں دا سہارا قسم خدا دی
سب نالو پیارا دین دین گواہی ذرے ذرے کو ہے تور دے دین دین گواہی ذرے ذرے کو ہے تور دے ویکھ دے نصیبا والے جلوے حضور دے ویکھ دے نصیبا والے جلوے حضور دے آمینہ دا جنتے سب نالو پیارا پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا تے دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی بنایا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا مدنی کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا
سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیئر ویورز آف مدنی چینل انشاءاللہ ان دا اینڈ ٹوڈے آور وظیفہ ول بی کیور فار مائگرینس انشاءاللہ سر کا درد ہوتا ہے نا اور ایسا ہوتا ہے کہ سکون نہیں آتا انشاءاللہ آج اس کا بھی ایک وظیفہ آپ کو بیان کریں گے بلیس لائف آف بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ول اسٹارٹ وتھ قمر بھائی اندر امیزنگ پرسنالٹی قمر بھائی جن کا پیشنس گریٹیٹیوڈ اینڈ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا جو ہے وہ آج تک لوگوں کے لیے مثال ہے
ماشاء اللہ آئی تھنک what you just mentioned Shah Sahab, the characteristics of the noble Hajra radiyallahu ta'ala anha, we know that the honorable Hajra radiyallahu ta'ala anha, she is the wife of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. She was the second wife of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and some narrations mention that it was his first wife, the noble Sara radiyallahu ta'ala anha, who advised Sayyidina Ibrahim alayhi salam that he should marry Sayyida Hajra radiyallahu ta'ala anha, as they did not have children. But it's amazing, Shah Sahab, that this is the human nature. You can't control emotions. Soon as the noble Hajra radiyallahu ta'ala anha, she's blessed with a child, Sayyidina Ismail alayhi salam. And obviously, this was an overwhelming feeling that now that she's with child, Sayyidina Ibrahim alayhi salam would be naturally inclined to the son. Allah subhanahu wa ta'ala, you see, with believers, Allah subhanahu wa ta'ala always enables them to find khair in any situation. Allah is the best of planners. So Allah subhanahu wa ta'ala sends a revelation to Sayyidina Ibrahim alayhi salam that he should take his son Ismail and his other wife Sayyidina Hajar radiallahu ta'ala anha, and he should go, because they were residing in Sham, Syria, Palestine, that he should take them to Makkah al-Mukarramah and leave them there, yeah, where the Kaaba was located. But obviously after the storm in the time of Sayyidina Nuh alayhi salam, things had changed. There was nothing there. Sayyidina Ibrahim alayhi salam takes his wife and his only son at the time, Allah, and leaves them in a barren land,
Allah,
where there is no water, there is nothing growing, and he's in the desert. In the middle of the desert, he leaves them. And as he's riding off, or some narrations say that he didn't even look back, Sayyidina Hajra calls out to him and says, where are you leaving us?
Allah.
Without any helper, without any companion. And Sayyidina Ibrahim alayhi salam does not answer initially. She repeats her question a few times. And then, being a noble personality, she says, has Allah subhanahu wa ta'ala ordered you to do so?
Subhanallah.
Is this from Allah subhanahu wa ta'ala? And then Sayyidina Ibrahim alayhi salam says, yes.
Subhanallah.
And then she says, if this is a command from Allah subhanahu wa ta'ala, something to the effect that Allah subhanahu wa ta'ala will not cause us to be destroyed or will not cause us to perish. So because it's the order of Allah, Allah has something planned for us. Did not complain, did not say anything else. She let Sayyidina Ibrahim alayhi salam go.
Subhanallah.
Sayyidina Ibrahim alayhi salam, as he leaves, he makes dua for them, which is mentioned in Surah Ibrahim in the Quran. We might come to that later. And the ulama say that he makes dua on this occasion. He didn't make dua when he was thrown into the fire. And the significance of this, the Mufassirin say, is that it's better to have tawakkul and do dua as well. So that's what Sayyidina Ibrahim alayhi salam did. Coming to back to Sayyidina Hajra, she's there. She had a few dates, a container with some water. When that finished, she was unable to feed her child.
Allah, Allah.
Her child, baby, becomes restless, so she runs between two hills, Safa and Marwa,
Allah,
seven times. And Allah subhanahu wa ta'ala, this action is so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, this love of a mother, that it was preserved and made a part of our Hajj ritual. So no water, she's searching up the hilltop, up the hilltop. After the seventh round, some narrations say it was an angel, and some narrations say that Sayyidina Ibrahim, Ismail alayhi salam, from his heel, water gushed forth, and this was the Zamzam water, and it had the, it would nourish them in such a way that it would quench their thirst, and it was enough as food also. So this is just a short kind of brief overview of what happened to the noble Hajar radiallahu ta'ala anha, or the account that she is famous for. And inshallah, we will discuss from this account all the lessons that we learn, one being that she put her trust in the command of Allah subhanahu wa ta'ala, even though apparently there were no asbab.
Allah.
Apparently there was nothing, but this did not shake her belief, her trust in Allah subhanahu wa ta'ala.
Trust in Allah. Waqai agar inki blessed family pe gaur kare, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Bibi Hajra radiallahu ta'ala anha, Hazrat Ismail alayhi salam, dono husband and wife or his son, in sab ka tawakkul dekhen, sabr dekhen, shukr dekhen, har ek apni misal aap hai, sab ne kehta badhkar qurbani hai, badhkar Allah pe tawakkul, aap dekhen ke koi shikayat nahi hai, koi shikwa nahi hai. Kabhi wo Hazrat Ibrahim alayhi salam aag mein pheke ja rahe hain to bhi jo hai wo rab pe bharosa hai, phir jo hai wo chhodne ja rahe hain apne bachcho ko तो भी भरोसा है, फिर वो कुर्बानी के लिए जा रहे हैं तो भी बच्चे पे अल्लाह ताला पे भरोसा है अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए. तो वालिदा की जो आज हम बात कर रहे हैं, इनकी भी जिंदगी जो है ना सब्र और शुक्र के दरमियान ही है. मतलब हमने बहुत कम जो है अपने बच्चों को ऐसी जो है वो चीज़ें बयान की हैं जो बताता है कि इस्लाम की रियलिटी क्या है और इस्लाम असल में क्या है. कुछ भी नहीं था, अल्लाह पे भरोसा. और आज देखें 1450 साल गुजर गए हैं और क्या कहते हैं, जब मेरा आका अलैहि सलातो सलाम के ज़ाहिरी जो है दुनिया से पर्दा फरमा, 1450 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये जो हज है इसमें ज़्यादातर जो अदाएँ हैं ये अल्लाह के नेक बंदों की हैं. सफ़ा मरवा को देख लें, मकाम इब्राहिम को देख लें, पत्थर मारने की अदा को देख लें, बहुत कुछ है. हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बताएं ताकि घर में सुकून आए. एक कैरेक्टर आ रहा है इसमें एज अ वाइफ के, जैसे इन्होंने हमारे कमर भाई ने मेंशन किया ایک کریکٹر آئے گا ایک ماں کے, کہ ماں نے کیسی تربیت کی تھی, کوئی شکوا شکایت نہیں. یہاں تو کچھ نہ کرے تو پیچھے کان بھرتے ہیں اولاد کے, کہ تمہارے باپ نے یہ نہیں کیا, تمہارے باپ نے. اب خود گھر کو جو ہے آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں, چاہے وہ اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو. ہمیں ان مبارک ہستیوں کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی بھی دوسرے کے بارے میں اس طرح بات نہ کرے کہ بچے کے دل میں کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہو جائے. ماشاءاللہ وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں.
ڈیفینیٹلی سے یہ صاحب, اینڈ ماشاءاللہ لائک قمر مدنی مینشن اینڈ یور سیلف ایز ویل, دیٹ اف یو جسٹ لک ایٹ دیئر صبر, اف یو لک ایٹ دیئر پیشنس, دس از جسٹ امیزنگ, دیٹ لیونگ دیم ان دی مڈل آف نو وے ان دی ویڈز, اینڈ دین اف یو لک ایٹ دس سید صاحب ٹوڈے, واٹ ہیپنز از دیٹ دی قران ہیز بین گیون ٹو اس, وی نو واٹ right and we know what's wrong, we know what's halal and we know what's haram, but even though we know what's halal and even though we know what's haram, people are still doing the haram actions. If you look at Bibi Hajar radiallahu ta'ala anha, when Hazrat Ibrahim alayhi salam told her that look, this is a commandment of Allah, her eyes were closed on that particular thing. She straight away agreed to that particular thing. But if you look in today's society now, we know backbiting is haram, we know lying is haram, we know slandering is haram, we know all these things are haram, but we're still doing it. But on the other hand, we know that we have to do so-and-so action, but we don't do those actions. And you spoke about a loyal wife. See, so today what happens is, it's the opposite. Today, you know, a husband is looking for a new house and the wife comes along, no, this house is not right. You can't buy this house, I'm not going to stay in this house. But if you look at Bibi Hajar radiallahu ta'ala anha, she agreed to stay in the middle of nowhere on the commandment of Allah azza wa jal. But today it's the opposite, that, you know, our kitchen's not right, our living room's not right, our drive's not right. Look at their next door house, they got a 3-bedroom house and we've got a 2-bedroom house. I want to mention a beautiful narration of Imam Ghazali rahmatullah alayhi, where he writes. He writes that if you look at the women of the past, when their husbands or their fathers used to go out in the morning for work, they used to say to their husband, and the children used to say to their father, they look, come home in the evening. Even if you bring a little bit home, Allah, that's Allah, fine by us, no problem at all. But make sure you don't bring even a morsel of haram, because we don't want to burn in the fire of hell because of you.
Allah.
These were the women of the past. But today what happens is, look at their house, look at their drive, look at their car, look at their business. It's the opposite of today. But if you look at Bibi Hajar radiallahu ta'ala, as soon as she found out that this is a commandment of Allah azza wa jal, and this is the order of her husband, in other words, she agreed to that. And this is one thing that the Islamic sisters need to also understand as well. That look, he goes out, it's a difficult day, he's bringing something home at least. We should remain content on that. We shouldn't force the other half to go to such a situation where he has to bring haram into our household.
Subhanallah, subhanallah. Hamare sath mashallah Shahid bhai bhi hain. Shahid bhai, bada zabardast topic hai, aur ye main samajhta hu bahut kam ye baatein hamare bachchon ko batayi jati hai. Halanki ye wo cheeze hain jo raat ko sote hue پتہ نہیں فیری ٹیلز اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے دنیا بھر کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بتانا چاہیے, بزرگان دین کے بارے میں بتانا چاہیے, امات المومنین کے بارے میں بتانا چاہیے, صحابیات کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ ایسی جو مقدس ہستیاں جن کی باتیں سن کر پڑھ کر ہمارے گھر میں سوسائٹی میں امن اور سکون آ سکتا ہے, وہ باتیں ہم نہیں بتا رہے ہیں, کچھ اور باتیں بتا رہے ہوتے جس کی وجہ سے گھر بھی برباد ہے, سوسائٹی بھی برباد ہے. آپ قربانی تو دیکھیں نا, اب قربانی دیکھیں, یہ کوئی آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے, ہم نے بھی بات کر کے نکل گئے, لیکن آپ غور کریں کہ ایسی جگہ گئے جہاں کچھ بھی نہیں, مڈل آف ڈیزرٹ کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہیں اللہ کی رضا پہ, اور ان کو بھی بھروسہ ہے کہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا, اللہ میں ضائع نہیں ہونے دے گا, ہے بھروسہ دے کے کتنا تھا اللہ. یہ وہ چیز ہے جو آج کے دور میں بالکل ہی ایک طریقے سے ختم تو نہیں لیکن ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے گھر کے اندر کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جائے تو فوراً شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں, ادھر فون کرتے ہیں, ادھر فون کرتے ہیں, اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بچوں کے ابو کے خلاف بچوں کو تیار کرتے ہیں, گھر والوں کو دوسروں کو تیار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. تاریخ نہیں بتاتی کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شکوہ شکایت کیا تھا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری فیملی میں سکون لا سکتی ہے.
ماشاءاللہ شاہ صاحب, if we look at the background of Bibi Hajar itself, she was from a place called Hafan in Egypt. And who was she? Her father was a king at the time. And look at the sacrifices. She left everything and she came into the Nikah of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And the patience was such that being left in the tremendous desert itself, where there's not even a green leaf, no human being, nothing at all. And then being left with the child there itself. And to a woman, a husband is the entire world for a woman. She would want everything from her husband, wants to have that time with the husband, everything itself. But she was different. Knowing that the husband has left her at the command of Allah Almighty, she didn't complain at all. If we look at women nowadays, if we do something, they'll start losing their cool. How dare you do this? How dare you not even think about us before you take any step? This is the mentality of women nowadays. And they'll start complaining. They won't, you know, think twice that our husband is doing something because of deen. Our husband is doing something to benefit for us and our children in the hereafter itself. But our children, you know, we don't teach them these things itself. The reason we don't teach them because we don't have enough knowledge ourselves. And because we don't have knowledge, we don't teach our children itself. We need to seek knowledge so that we can teach our children and the sisters of our household itself.
MashaAllah. Asif bhai, dekhen, matlab is pe thoda sa aap dekhen, Quran mein Allah ta'ala, ye aap dekhen kitni badi sa, Allah pe bharosa kiya, Allah ta'ala ne Quran paak mein zikr farma diya, qiyamah tak tilawat hoti rahegi. Hai? Aur usko jo hai, wo umrah karne jaye, haj karne jaye. उनकी अदा को अदा करना ही करना है इन्नस सफा वल मरवता
मिन शाइर
अल्लाह इस्लाम के शार बना
दिया क्या बात है शाह जी क्यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा जो हाजी आएगा जो उमरा करने वाला आएगा वो चक्कर लगाना उसके लिए ज़रूरी होगा हाजी के लिए शाह जी आज का टॉपिक ही माशाल्लाह ऐसा कई हवाले हैं ना गुफ्तगू की जा सकती है एक बाप का करैक्टर देख लो एक वालदा का करैक्टर देख लो एक वाइफ का करैक्टर देख लो एक बच्चे की तरबियत देख लो अज सू गौर करना चाहिए कि असं अपनी औलाद की तरबियत किदा करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पा के आका करीम ने फरमाया कि अदिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल अपनी औलाद नू तीन चीज़ा सिखाओ कि अपनी औलाद नू कुरान पाक की मुहब्बत सिखाओ अहले बैत की मुहब्बत सिखाओ तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुहब्बत सिखाओ असं हर चीज़ उन्होंने सिखाने हर चीज़ का उन्होंने लेके दिने लेकिन सानू गौर करना चाहिए जिदा असं दुनियावी चीज़ों के बारे दुनियावी एजुकेशन के बारे उन्होंने गाइड करते हैं दुनिया के नाल दीन की तरबियत उन्होंने कितनी लेके दिने आका करीम ने फरमाया कि सारे तो अच्छा तोहफा सारे तो अच्छा एक गिफ्ट जिहड़ा वालिद अपनी औलाद नू दिंदा ना अच्छी तरबियत
सुभान अल्लाह
आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी तालीमात देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कनैक्शन देखो ताल्लुक देखो आपस फरमा बरदारी देखो शाह जी फरमाया कि या बुनिया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी असबहु का फंजुर मा तरा
अल्लाह
उन्होंने ये नहीं किया कि की करने लगे अब्बू जी फरमाया इफ़अल मा तुमर जो थानू क्या करने का हुक्म दिता गया तुसी करो क्यों चरा की थी नहीं अगियो ये तरबियत
जी माशाल्लाह कमर भाई टॉपिक क्योंकि वाकई इस तरीके का है कि जिक्र कभी इधर आ जाता है कभी वो सब वो मुबारक हस्तियों की कुर्बानियाँ और सारी चीज़ें लेकिन एक और चीज़ है आप जो मदनी फूल में इस पर देखूँ कि अल्लाह ताला ने उसका अजर किया कि आबे जमजम जमजम जो है वो जारी हो गया और वो ऐसा जारी हुआ कि वो आज तक जारी हो कयामत तक जारी रहेगा अफजल तरीन पानियों में दुनिया के अफजल तरीन पानियों में वो है कि जो सबसे अफजल तरीन पानी कौन सा है तो इंशाल्लाह वो भी एक क्वेश्चन हुआ था वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि अफजल तरीन पानी कौन सा है अफजल तरीन लेकिन जो अवामुन नास में जो मशहूर है वो ये कि आबे जमजम सबसे अफजल तरीन पानी है और ये आबे जमजम किस वजह से बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दौड़ने की वजह से और वहाँ पे जो उनका सब्र था जो अल्लाह पे भरोसा था अल्लाह ने जो है वो ऐसी नेमत अता की अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि वो पूरे पूरा वहाँ पे शहर आबाद हो गया कुछ भी नहीं था और ये जो है ये मतलब दुनिया में लोग हाजी आते हैं दुनिया भर में ये लेकर जा रहे हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा
Things, Shasab. One, when we look at Sayyidina Ibrahim alayhi salam, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, and we look at the Honorable Hajar radiallahu ta'ala anha, it is no surprise that they are blessed with a son like Sayyidina Ismail. When the mother and father, Allah subhanahu wa ta'ala, has blessed them with such characteristics, then it only seems natural that the child that comes from that bond is a prophet of Allah and is referred to as Halim also according to some Mufassirin in the Quran because he is one of forbearance and mashallah Asib was mentioning this that later when a time came where Sayyidina Ibrahim alayhi salam was again commanded to sacrifice his son the reaction of his son is something, we will have a session on this also. So his forbearance, his son's forbearance, Sayyidina Ismail alayhi salam, his forbearance is shown in that particular account. When Sayyidina Ibrahim alayhi salam left, and the Honorable Hajra was there with her son, baby, Sayyidina Ismail, when food, a tribe was going past, and the Jurham tribe, and they saw a bird near that location. That was how they found out, because there was no one else.
Thing.
Yes, if a bird is there in this wilderness, in this desert, there must be a source of food or water. So naturally they came and they discovered that Sayyidina Hajra radiallahu ta'ala anha was there. But the point I want to make here also is that, going back to that account, when Sayyidina Ibrahim alayhi salam left, and the answer was, it became clear, this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alayhi salam showed through his character, when it comes to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, no one will affect the obligation or the fulfillment of that command.
Masha'a.
Because these days there's a problem. Someone needs to get married in the family. Husband, wife, they're in the middle ages. Well, they're in the middle age now, and their son or daughter is like 20s, in their early 20s. Time to get married. Usually they're quite religious, or the husband's quite religious. But now, Shasab, it's marriage. How can we forget all those traditions?
Oh, yeah. Allah, Allah.
And all that free mixing and all the music and all the other haram actions.
Astaghfir.
How? So the wife says to the husband, and this is by no means, our sister should not think that it's just the wife, sometimes it's the husband.
Yeah.
The point is, when it comes to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no compromise.
Bishop.
So it may be the husband is saying, the wife is very religious, she's praying five times a day, and the husband's like, oh, koi nahi shaadi hundi, you know, it's a wedding, and so what, doesn't matter, let it just carry on, go with the flow. You see bearded people,
astaghfirullah,
dancing.
Astaghfirullah.
Because they give, why? And you asked him, Janab, aap bhi kar rahe hain ye.
To kya ho gaya?
Shadi hai na, shadi.
Just a shadi.
It's a one-off. It's a wedding. And that's when they compromise their principles. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, through his example, some might say, oh, he's a prophet of Allah. That's not the point. The prophets live lives so that they are followed. Our Prophet sallallahu alaihi wa sallam lived his life to be followed.
See.
So this point that, oh, this is a prophet of Allah, so there's no comparison. No, that's wrong to say. When it comes to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, a wedding, any other get together, the Sharia should never be compromised. You build your life around Islam, you don't do the opposite. So you don't build Islam or follow Islam around your lives. So your customs and your social functions or anything, whatever you do, should not affect your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. She was successful in that test. Allah subhanahu wa ta'ala made her very actions a sign from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah preserved her actions. Allah preserved her memory. Allah gave her such honor that today, after thousands of years, hundreds of years, we are remembering Sayyidina Hajra radiallahu ta'ala.
We'll take few calls, inshallah. Uske baad ye to ek waqia, aur iske baad jab wo qurbani ke liye jo hai Hazrat Ismail alaihi salam ko lekar ja rahe, us waqt bhi inka sabr, us waqt bhi Allah pe tawakkul, Allah pe bharosa kaisa tha, ye thodi der mein batate hain, inshallah. We'll take few calls now.
माशाल्लाह, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं आप. तो मेरा सवाल ये है कि ये कान और नाक छीदने का रवाज कब से चला था? बराए करम इस वाले से रहनुमाई फरमाएं. सुना है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दौर का ही है. अगर कोई वाकया है इससे रिलेटेड तो वो सुना दें, और नात खान इस्लामी भाई ये कलाम भी सुना दें. तनम फरसूदा जहाँ बराज हिजरा या रसूल अल्लाह.
इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो ये वाकया सुनाएंगे. किताबों में लिखा हुआ वैसे. नेक्स्ट कॉल प्लीज.
My name is Muhammad Bas. I am calling from the I have read 9000 Dushi. My new cassette to read this and Uncle Bulana Ya Rasulullah. Make dua for me. I'm a fan with you.
Ameen, ameen. Chale, inshallah sunate hain. Hamare paas package bhi ek ready hai, lekin isse pehle Waseem bhai kuch farmana cha rahe hain.
Sayyid Sahab, I just want to say something here that, mashallah, the incident that Abu Kamal bhai mentioned earlier on. Now, in regards to this, we also learn one particular thing. that the love a mother has for a child. Okay. No doubt. You know, the way a mother loves a child, there's no one else that can love that child. Now, Sayyid Saab, today, once a mother passes away, you know, you have an aunt, you have a cousin, sister, you have etc., the list goes on. But no one can replace a mother. But unfortunately, in today's society, we see people swearing at their parents, swearing at the mother, disrespecting the mother. And at times we even see those news circulating as well, where children are beating their own parents up. And just today, Sayyid Saab, I was reading about something, and I was surprised that in one particular country, thousands and thousands of incidents have been recorded where children are beating their parents up. Meaning this is how far away we are from Islam. That those parents that brought you up went through various difficulties. That mother that went through the stages, you know, she'd seen death, in other words. But she went through that difficult time and she still brought you up. Today, those children are beating their parents up. This is the time that we are seeing today. A mother is a mother. There's no one that can replace a mother. And even a father, no one can replace a father. And so, it's of no doubt, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that whoever looks at the face of his mother or father with a merciful gaze, Allah grants them reward of a hajj, alhamdulillah. The Sahaba asked the Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even if someone looks at the face of the mother or father 100 times, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah is Rahim. Allah is the most merciful. If someone looks at the face of his mother or father with a merciful gaze, Allah will give them the reward of a hajj, inshallah. So definitely, Sayyid Saab, from this particular incident of Hazrat Hajar radiallahu ta'ala anha, we hear the love that a mother has for a child. But especially those youngsters, those children that are watching at this moment in time, we shouldn't disrespect our parents. We should look after our parents. We should look at their face with a merciful gaze, inshallah. We should respect them, because like I said earlier on, there could be a replacement for a cousin, for a brother, for a friend, but there is no replacement for a mother and no replacement for a father.
ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵ ਨਾ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿਦੈਨ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਮਲਕਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਉਤਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਵਕਦਾ ਰੱਬੂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਤਅਬੁਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾਹੁ ਵ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨਾ ਇਮਾ ਯਬਲੂਗਨ ਨਾਇੰਦਾ ਕਲ ਕਿਬਰ ਅਹਦਹੁਮਾ ਔ ਕਿਲਾਹੁਮਾ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ। ਉਫ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝਿੜਕੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ
ਹੈ। ਸਰ, ਜਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਨ ਦੈਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਸ ਨੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੁਡੇ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਡ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ in certain circumstances, and they have kicked their parents out of their houses. The house actually belongs to the parents, but because of the dispute of property, they've actually physically kicked their parents out of their houses, and the parents have cried that, what do you want me to do? Where shall I go? It's my house. The children say, well, we don't need you here. They put them in old people's home, or go to the council and they will give you property. This is the behavior of children nowadays. But if we read the events of Bibi Hajra, if we read the events of Islam itself, it teaches us how to respect our parents. It teaches us how parents should be treated in every aspect itself. Unfortunately, due to the lack of knowledge of the youngsters nowadays, due to the lack of knowledge, because we don't take time to seek knowledge, we have time for everything else. We spend hours on end playing on our mobile phones. We spend hours on end playing games on iPads and everything itself. But when it comes to seeking knowledge, we don't take that step. And we need to teach our children to seek knowledge of deen, teach them so when we are older, our children can look after us. If we don't take that step now, then unfortunately we will face circumstances which we may not be able to bear.
Some people, Shah Saab, they lose hope. And in the account of the Honorable Hajar radiallahu ta'ala anha, we are reminded to not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has clearly commanded us, it's wajib, it's necessary upon us to not lose hope. We have to be people who have the right mindset. Because Sayyidah Hajra, she showed us, some people might think, oh, we're giving this example just to highlight what a woman should be like. No. her example highlights how a believer should be.
Subhanallah.
A believing person. This is the kind of person you should be. When you're left and you're told this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, trust Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hakim, he mentions a narration that Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala anhu reports that once our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he came out of his blessed house very happy, smiling, very happy. And just imagine the reaction of the Sahaba and Sayyidina Hassan, who saw the smiling face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, very happy. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that one difficulty will never prevail or overpower two moments of ease, something to that effect. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam repeated the verses فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا, from the Surah Inshirah, that in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala has said that with difficulty there is ease. And it's repeated, with difficulty there is ease. So the Mufassirin say this means that when you face one difficulty, the ease is twofold. So our mindset should be, whenever we face a problem, calamity, it doesn't matter how serious it is, it brings us to our knees, apparently there is no hope, it's a hopeless situation. Remember the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. With difficulty there is ease, and the ease will always be twofold. So this is what the life of Sayyidina Hajar radiallahu ta'ala anha reminds us of. And when she did that, Allah subhanahu wa ta'ala showed her such blessings that she became the reason for that blessed city becoming occupied by so many different people, and she became a source of reference for centuries to come after her. Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy upon her.
Ameen. Ji, we have a beautiful package. Aayye usko dekhte hain, inshallah.
While advising regarding bringing up children, Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh writes that child should be taught to respect with whomsoever he has interaction with, meeting others with humbleness, and talking respectfully and in a very polite manner with everyone. Teach such habits. A few days ago, I went somewhere in someone's house. That was our first meeting. We also sat down for a while. The host called his son and introduced him to me. Now, the father was guiding his son that how he should talk and behave. But when we instruct and guide our child in front of everyone, then this way that child feels embarrassment. For example, if any respectful personality comes to your house, and in front of him, if you start telling your child, oh, do this way, do that way, that child will definitely feel embarrassment in front of that personality. Well, it also depends how are you explaining and telling the child. Or if you do the same in front of your child, then he would copy you at some point. Yes, he would do the same. For example, your father comes to your house. Okay? Your father has come to your house. Now, father is also at home, and grandson of grandfather is also at home. Okay? Now, as soon as grandfather entered home, father stepped ahead, kissed his hands. Because, hey, you did so, you are son of your father. That is why you're kissing his hands. But your own son is looking at you. How are you treating your father? As soon as son will see his own father kissing hands of his father, he will also step forward and kiss the hands of grandfather. You would have this experience if you go to someone's house. Well, you can also include this in one of the teaching methods. Well, the example I was quoting, if you go to someone's house as a guest, then host comes and welcomes you at door. And sometimes host removes shoes before entering sitting room. The owner indicates that this is the place to remove shoes. Now, when the guest would look at the host removing shoes there, no guest will enter with shoes and would remove shoes there. And there are different norms in certain places, like South Africa, and there are certain other countries where we travel, people that don't remove shoes when they enter homes. And guests can also walk in with shoes, no one minds. In other words, this practice is not considered bad, as compared to certain other houses or some other countries. Different places, different norms. So it's a very common understanding. Children copy and do the same whatever they look at their parents doing. They copy their parents. If you can get time, you should keep your child with you. And by this way, you can teach him how to meet and greet others. Definitely, you'll be able to teach him the right way of meeting and greeting when he will be with you, and you will demonstrate how to meet and greet people in a very polite manner. And you should also teach the child what is respect.
ये पैकेज देखने से पहले बात हो रही थी बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सबर की, ग्रेटिट्यूड की, और क्या कहते हैं, ट्रस्ट इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. हज़रत दहाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई. वो फरमाते हैं कि जो शख्स 40 रातों में एक रात भी अगर किसी में गिरफ्तार रंजो अलम का शिकार ना हुआ हो तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई खैर व भलाई नहीं.
अल्लाह,
यानी अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो फिर उसके ऊपर मुसीबतें और क्या कहते हैं गम जो है ना वो बढ़ जाते हैं. और जब अल्लाह किसी से नापसंद करता है किसी को, तो उस पर दुनिया को कुशादा कर दिया जाता है. तो हमें गौर करना चाहिए. आजकल तो ऐसे हालात हो गए हैं कि बीवी जो होती है वो जो बच्चों के अबू का तो खाते में ही नहीं है ना आना. बच्चों के अबू ज़रा सा कोई ऊंच नीच हो गई है. बहुत कम खानदान ऐसे हैं, यानी ये वो होंगे जिनके घर में वाकई इस्लामी माहौल होगा. टू बी ऑनेस्ट, इसी तरह आपको मेजॉरिटी दिखेगी कि जो जिन्होंने इस्लामी एजुकेशन नहीं ली है ना, उनका यही है कि ज़रा सी ऊंच नीच हुई डिवोर्स, ज़रा सी ऊंच नीच हुई मैं जा रही हूँ तुम जा, मतलब मेरे पास कुछ आए इस्लामी भाई कि क्या करें, ज़रा से कारोबार में उनका आगे पीछे हो गया, कहते घर वाले चले गए, कहते गुजारा नहीं हो रहा तुम अपना जाओ मैं अपना. यानी इस कदर वो है कि अल्लाह पे भरोसा नहीं, यानी कि जब तक पैसे दे रहा है, जब तक चीज़ें लाकर दे रहा है तो ठीक है, और ज़रा सी कोई आजमाइश आ गई, जबकि इन दोनों को साथ होना चाहिए. इस घर की और इस ख़ानदान की भलाई मियाँ और बीवी की आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के अंदर ही कायम है. अगर इन दोनों के अंदर ही ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, एक दूसरे ऊंच नीच आ जाए, जिंदगी कभी कच्चा चलता है, कभी कोलैप्स हो जाता है बंदा, किसी को क्या पता. और अगर उस वक्त जब उसको सहारा चाहिए और आप छोड़कर चले जाओ, तो फिर कैसा होगा. यानी एक तरफ यहां देखें, छोड़कर गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर दूसरी कुर्बानी की मिसाल, दूसरी सबर की मिसाल हो रही है कि फिर बच्चे को जो है वो जिबा करने के लिए जो है कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं. और ये नहीं हुआ बीच में कि उस वक्त छोड़कर चले गए थे अब आ गए ये क्या करो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा कलाम नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और फिर दूसरी दफा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई, सबर करने के लिए तैयार हो गई है. आज की जो हमारी इस्लामी बहनें हैं उनको ये गौर करना चाहिए, क्या मैं अपने घर जो मेरे बच्चों के अब्बू हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, क्या मेरा उनके साथ इस तरह किरदार है, क्या मेरे दिल के अंदर ये है कि अगर ऊंच नीच हो जाए मैं इनके साथ खड़ी होंगी. आजकल तो फौरन ही भाई आप अपना रास्ता लें, मैं आज तो कपड़े ना दिलाए तो उस पर तलाक आ जाती है कमर भाई. यकीन करें वो हुआ कि भाई क्या हुआ जी, शादी के दौरान में कारोबार नहीं चल रहा था तो उसने कहा भाई सूट नहीं दिला सके, सूट नहीं दिला सके चलो जी चले गए घर पे. वो अपने घर पे या अपने घर पे बात खत्म हो गई, उसके बाद आ रहे अब क्या होगा. अब क्या होना था, बच्चों की लाइफ भी बर्बाद हो गई, अपनी लाइफ भी बर्बाद हो गई. तो प्लीज सब्र किया करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बहुत कुछ मिलता है, अल्लाह बहुत नवाजता है सब्र करने वालों को. इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र करने वालों के साथ है, बेसब्रों के साथ नहीं है. तवक्कुल करें, भरोसा करें रब की जात पे, वो बहुत नवाजेगा, वो बहुत वही तो नवाजने वाला, और कौन नवाजने वाला है. तो हमें क्या करना है, इनकी सीरत से ये सीखना है कि अब हमारे घरों में ऊंच नीच हो जाए, कोई भी बात हो जाए, सब्र करना है और सब्र करना है.
सही सब. Bashir, you just spoke about tawakkul and you talked about sabr. Remember, sabr, if you do sabr, inshallah, azawajal, your rank will be elevated as well. And you spoke about tawakkul, is one famous hadith, one beautiful hadith, where the Prophet sallallahu alayhi wasallam has mentioned that have tawakkul in the court of Allah azawajal the way you should have tawakkul. Because Allah azawajal will give you sustenance in such a way that he gives birth sustenance. Now, if you look at the birds in the morning, they all leave their homes, in other words. And what happens is they go and they all come back with a full stomach as well. So in the same way, we should have tawakkul today. Our cupboards are full, our fridges are full, everything is full. But we still don't have tawakkul in the court of Allah. What happened with COVID-19 a few months ago? You know, we found that something's happening and that's it. Massive line, this happening, that happening. So we should definitely have tawakkul, trust in the court of Allah.
Ghar, Kamar bhai, seen few videos ke किचन क्या बाथरूम में भी सामान रखे हुए थे,
बेडरूम में
बेड वो पूरा घर भरा हुआ, यानी बेडरूम में रखने के बाद सबसे जो कहते हैं ना रखने वाली जगह वो बाथरूम है, बाथरूम में भी खाने का सामान उसकी वीडियो बना के दे रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सी बर्ड्स के बाद फ्रिज होता है कहाँ होता है, लेकिन देखें कोई भी भूखा नहीं होता है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। कुछ कलाम की फरमाइशें थी,
तनम फरसुदा जाता राज़े हिजरां या रसूल अल्लाह, तनम तनम फरसुदा जाता राज़े फरसुदा पजमर्दा आवारा सियां या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजर आरी मने मिस की जिनादारी, चुसुए फरसुदा जा पारा सियां या रसूल अल्लाह, हमको बुला लो या रसूल अल्लाह, हमको बुला लो या रसूल अल्लाह, हमको बुला लो या रसूल अल्लाह, हमको बुला अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूं मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह, हमको बुला लो या रसूल अल्लाह, हमको बुला लो या रसूल अल्लाह, सब्ज़ गुंबद नजाए आका दीदार
many calls बाकी हैं और आपके मदनी फूल भी हैं, हमारे सेगमेंट भी है, साइन लैंग्वेज बड़ा चल रहा है और काफ़ी मुझे मैसेजेज आए जी। कॉल्स ले लेते हैं इंशाल्लाह, देन वी विल हैव आवर सेगमेंट ऑफ साइन लैंग्वेज, देखते हैं शाहिद भाई क्या कमाल करते हैं साइन लैंग्वेज।
सैयद अमारत तारी वोलसल यूके से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह ताला आपको बरकतें आता फरमाए।
नेक्स्ट कॉल प्लीज।
माय नेम इज मीरबत तारिया एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोल्टन यूके। प्लीज कुड नॉट कॉन रीड दिस हम्द। तू ही मालिक बहरो बर है या अल्लाह या अल्लाह, तू ही खालिक जिन्नो बशर है या अल्लाह या अल्लाह। प्लीज मेक दुआ फॉर माय फैमिली। जज़ाकल्लाहु खैरा।
बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल प्लीज।
माय नेम इज मोहम्मद जाफर एंड आई एम फ्रॉम मैनचेस्टर। आई रेड 7400 टाइम्स दुरूद शरीफ एंड 4000 बिस्मिल्लाह शरीफ। योर प्रोग्राम इज वेरी beneficial. I recommend you to read this snack. Ab to bas ek hi dun hai ki madina dekhu. Jazakallahu khair.
आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी मदीना दिखाए, हम सबको मदीना दिखाए, जो मदनी चैनल देख रहे हैं उनको भी अल्लाह मदीना दिखाए। हमारा सेगमेंट भी कमर भाई सेगमेंट पहले कर लेते हैं, फिर कोई मदनी फूल लेते हैं इंशाल्लाह साइन लैंग्वेज का। तो कौन करेगा? चले हाँ हाँ जी, अच्छा चले कमर भाई, देखना नहीं है।
अच्छा ठीक,
मदनी चैनल वाले देख सकते हैं और वसीम भाई भी देख सकते हैं। मुश्किल क्या आ गया, ये तो इतना ईजी है जी। बिल्कुल मदीना रेडी।
अच्छा
इशारा कर, ये क्या कुछ सेल्फी का इशारा कर रहे हैं?
नमाज
का भी इशारा कर रहे हैं।
अच्छा ऑस्टेंटेशन
क्लोज,
क्लोज क्या अभी बात तो करने, क्लोज क्या
वेरी क्लोज।
ओके
आप क्लोज क्लोज नहीं बोलेंगे, हम ओपन कर देंगे, क्लोज का ऑपोजिट कर देंगे जी। दो सेकंड आपको और दे देते हैं जी। पहुंच गए थे, क्लोज पहुंचे हैं, लेकिन
वेरी क्लोज
जी,
इससे अदर वेट फॉर
अदर कह सकते हैं, लेकिन असल में जो है वो है
शोइंग ऑफ
रियाकारी। चले बात होते होते पहुंच गए कमर भाई, क्या बात है उनका। चले जी माशाल्लाह, वसीम भाई ने जो है ना वो पहुंचा ही दिया है। चले जी शाहिद भाई रेडी हैं, कौन करेगा इशारे? जो शाहिद भाई करेंगे वही होगा कुछ। कौन इशारे ये आप बताएंगे?
जिस तरह
चले जी आप करते हैं, पहुंचा दीजिएगा फिर। शाहिद भाई देखना नहीं है, कोर्ट में देखते हैं आप, इधर उधर इजी आ गया है। चले
साइलेंट प्रिंस स्लीप, साइलेंट
अंगूठा दिखा रहे हैं।
गुड स्लीप,
गुड स्लीप कौन सा रिसाला है?
स्लीप साइलेंट,
साइलेंट साइलेंट पे पहुंच के रुक गए हैं, टाइम खत्म होने वाला है। गुड स्लीप भी बता दिया था इन्होंने, दो अंगूठे दिखा दिए, इसका मतलब है शाहिद भाई
साल साल साल
शाहिद भाई बिल्कुल सेकंड खत्म हुए हैं और साइलेंट इस सेल्वेशन में पहुंच गए हैं। चलें जी ये रिसाला, ये मुझे कह रहे तो मैं भी चले, तो हम भी क्या, मैं पहुंचूंगा आप करोगे या मैं दिखाऊंगा इशारे? मैं इशारा करूंगा, दिखाऊंगा, कौन पूछेगा, कौन ये सारे पूछेंगे? चलो ठीक है, चारों अगर तीनों आंखें बंद कर लें, वसीम भाई को चैनल पे मैं इशारे करूंगा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह सिर्फ वसीम भाई देखेंगे और बाकी तीन इंशाल्लाह पहुंचेंगे। चलें जी मैं पहुंचाता हूं, कहाँ रेडी?
मुर्दा सांप।
मुर्दा सांप कहाँ से आ गया?
सांप
स्नेक
क्लोज,
स्नेक
इंग्लिश में ना जाहिर है,
इतना इजी स्नेक,
डेड स्नेक,
डेड स्नेक, कौन सा स्नेक? डेड कहाँ से स्नेक? अब मैंने तो इशारे ठीक किए, वो ना पहुंचे तो क्या कर सकते हैं?
बस ऑपोजिट,
چلے ٹائم تو ختم ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین پر, رسالے بات ہے نا, رسالے پڑھے ہو تو آگے ڈیڈ اسنیک کہاں سے آ گیا, انجرڈ اسنیک ہے. اب وہ صاحب انجرڈ کیا بتاؤں گا, وہ گرے گرے گئے نا, پھر مرا ہوا صاحب کہاں سے آ گیا رسالہ. چلے ابھی پہنچ گئے, گئی انجرڈ اسنیک تھا تو اب وہ گرانا ہی تھا میں نے اس کو, اس کے بعد دوبارہ چلا تھا تو شاہد بھائی پہنچ جاتے. چلے بارہ شاہد بھائی تو کہاں کہاں پہنچا دیا تھا شاہد بھائی نے. بہت ساری کالز آئی ہوئی ہیں جی, کال چلا دیجیے.
I am Kasim Atai from Bolton, UK, and I have read 1,000 Rushi. Please can you make dua for me and my family? Jazakallahu khaira.
Ameen. Jazakallahu khaira. Aapka bhi mashallah. Next call, please.
My name is Muhammad Aris Amin from Sandwell and my family have read 5,000 times the Rood Sharif.
وقت ہمارا بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. وسیم بھائی کیا آپ فرمانا چاہیں گے؟
So, sir, in regards to when Shaitan came to Bibi Hajar رضی اللہ تعالیٰ عنہ and he told her that, look, do you know where your son is and Hazrat Ibrahim علیہ السلام is? And she goes, they've gone for a task. He goes, no, look, he has gone to sacrifice your son because he thinks this is a commandment of Allah عز و جل. And she replied that if it's that case and he thinks it's a commandment of Allah, then he's doing the right thing. Now, in regards to this Sayyid Sahib, I just want to mention one thing, that today if our children or maybe someone's husband or even on the other side, if someone's wife is going towards the path of righteousness, maybe if someone's son is growing the beard, going to the ishtimaat, going towards the Madani Qafle, going to the masjid to read namaz. Unfortunately, in our society today, we see the parents stopping their children. Look, what are you doing? You've got your whole life instead of in front of you. You need to get married, yeah. You need to get a job, yeah. You need to go do this as well, yeah. But Sayyid Sahib, definitely from the life of Bibi Hajar radiallahu ta'ala anha and from the pious people of Allah, we learn that as soon as their children used to take a step towards righteousness, they used to allow it. But today, on the other hand, we see in our society, our child is just taking a step or thinking about taking a step towards righteousness and the parents stop them. Allah. Definitely for the pious people of Allah, from what we learn from this lives, we definitely should do this. We should try to encourage our children to attend good gatherings, travel in the way of Allah Azawajal, and especially go to the house of Allah to read their salah, inshallah.
MashaAllah. Our segment, Wazifa, has also come a message. I will quickly tell you, on the screen, Wazifa is coming. Migraine is a lot of headache, people's heads are in pain. تو اس کے لیے ریسائٹ لا الہ الا اللہ 65 ٹائم آفٹر صلاۃ العصر اینڈ بلو آن ٹو دا ہیڈ بائی دا گریس آف اللہ آل مائٹی مائگرین اینڈ دا ہیڈک ول گو اوے ان شاء اللہ عز و جل. سر کا درد اور مائگرین ان شاء اللہ 65 ٹائم ریسائٹ لا الہ الا اللہ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ود درود شریف اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گا, لیکن یہ آفٹر صلاۃ العصر جو ہے یہ پڑھنا ہے اور پھر سر پر دم کرنا ہے ان شاء اللہ عز و جل. قمر بھائی کوئی ایک کیا میسج دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ, آخر میں ہم اشعار لے لیں گے انشاءاللہ.
جی آئی تھنک فرام دی لائف آف سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا, اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس دیٹ ایون ان دی ڈارکسٹ مومنٹس آف آر لائفز, ایون وین وی سیم ٹو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس, اور دیر از نو ہیلپ, دیر از نو اپیرنٹ مینس فار اس ٹو اسکیپ اے ڈیفیکلٹ سچویشن, اللہ سبحانہ تعالی ول ناٹ اونلی پرووائڈ سسٹیننس فار اس, Allah subhanahu wa ta'ala will remove that difficulty and will give us ease as long as we remain firm in our belief and we remain firm in obeying Allah subhanahu wa ta'ala. Because what happens is people,
Mission.
They want the reward, but they don't fulfill the criteria, don't fulfill the conditions. Keep strong your conviction, your certainty in faith must be strong. And two, we must continue to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Not when you face a calamity, you leave your salah, you leave all your obligations in the religion. You maintain them and you do more to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, you will see the reward of this.
Kamar, بہت اچھی بات کی ہے. عموماً پریشانی میں, لیکن کمر بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ پریشانی میں چھوڑ دیتے ہیں, اکثر پریشانی میں یا تو اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیمپرری نمازی بن جاتے ہیں اور پھر جب مسئلہ حل ہو گیا, کیس ویس ٹھیک ہو گیا, جیت گئے ہو گیا, تو اس کے بعد پھر چلے جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پریشانی آئے تو اس پہ زیادہ صبر ہو, کیونکہ صبر چونکہ بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, لہٰذا اس خزانے کو پانے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. شاہد بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟
Life and the role of the father, the mother and the child itself in these circumstances, they all perform their roles to such a perfection for the pleasure of Allah Azza wa Jalla. Likewise, when we do things in our families, we should do things for the pleasure of Allah Jal. And we should listen to each other and appreciate what everyone's saying, rather than taking control that I'm head of the household, it's my say, and that's it. And whatever decision I make, that is the final line of it. Rather than doing that, we should discuss things with our wives, with our children, before we make any final decision of things.
ठीक है जी, शाहिद भाई decision बना रहे हैं. आप क्या decision बनाएंगे आसिफ भाई?
मैं शरी अर्ज करना चाहूँगा. शोहर और बीवी के दरमियान connection, मोहब्बत, प्यार ऐसी होनी चाहिए जैसे मौला अली और सईदा खातून जन्नत के दरमियान थी. कुरान पाक में शोहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया ना, हुन्ना लिबासुल्लाह कुमान तुम लिबासुल्लाह. लिबास होता है इसलिए कि एक दूसरे के ऐबों पर, एक दूसरे की जो कताहियाँ हैं, जो गलत हैं, उनके ऊपर पर्दा डाला जाए. इंसान खता का पुतला है, हो जाती हैं गलतियाँ. दोनों तरफ अगर प्यार होगा, मोहब्बत होगा, घर का माहौल भी अच्छा होगा, बच्चों की परवरिश भी इंशाल्लाह अच्छी होगी.
चले जी, हम अशआर लेने शुरू करते हैं वसीम भाई के साथ और देखते हैं वसीम भाई कहाँ पहुँचते हैं. लगाओ सीने में आग ऐसी, करार पाए ना दिल कभी भी.
रुलाए दिन रात तेरी उल्फत, नबी ए रहमत शफी उम्मत.
क्या क्या बात है, कैसे याद कर लेते हैं यार. उधर तो बड़े बड़ों के आजमाइश हो जाती है, नात खानों की हो जाती है, ये याद करके आते
हैं. ये सब दिस सम कलाम इज अमेजिंग ऑफ मी.
लिसन, आप सुना दें फिर, आप आज आप सुना दें.
ओ मशरा आसिफ भाई,
लगाओ सीने में आग ऐसी,
शायद हम सारे पढ़ भी ना सके. कमर भाई इजी, सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना. अमीर अहले सुन्नत का कलाम है.
आंखों में मेरी आप समाए
क्या
बात. सीने में हो
किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका.
किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका.
आज बताइए दें शायद भाई.
चमकाइए चमकाइए आका.
देख लें देख लें.
नहीं तो रिटर्न,
इतनी बड़ी किताब है कहाँ से देखें.
हम रिटर्न. किस्मत मेरी चमकाइए.
चलें वक्त खत्म हो गया है.
किस्मत मेरी चमकाइए चमका.
क्विकली सुना दें आसिफ भाई. दूसरा मिसरा है, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का.
पहला बताना है,
पहला बताना है, दूसरा मैंने आपको बताया. बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का.
एक बार तो
पढ़ते नहीं लेकिन याद करते हैं ना. बता नाथ खानों को बता रहे हैं. क्या बात है, अगली दफा माइक आप रखेंगे इंशाल्लाह.
Asked something earlier in the program that which water is afzal than abi zamzam, so if you could please give the answer to that as well inshallah.
कौन सा पानी सबसे अफजल है, वो पानी जो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम की मुबारक उंगलियों से निकला था.
माशाल्लाह,
आला हज़रत ने लिखा
उंगलियां हैं फैज पर,
उंगलियां हैं फैज पर,
टूटे हैं प्यासे
झूम कर
नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह
ये इंशाल्लाह टाइम नहीं वरना इसको तर्ज में इंशाल्लाह बात बड़ा जबरदस्त वाकया है इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग मदनी चैनल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
The path of the knowledge is the way to Jannah, Jannah.